your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, and dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family schedule onto a sleek digital display, so you focus on important things like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk.
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को देश के कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक अतीत के नेताओं का जश्न मनाने वाली अपनी सार्वजनिक मूर्तियों के साथ क्या करना चाहिए? एक समूह को लगता है कि उसके पास इस सवाल का जवाब है। एसपीएस के द फीड ने मेलबर्न के एक गुमनाम समूह से बात की जो कि कॉलोनियल स्टैच्यूज यानी कि मूर्तियों के पीछे पड़ा हुआ है। ये जो गुट है, ये आधी रात में ऐसी मूर्तियों को गिराता है, तोड़ता है या फिर खराब कर देता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले आपको बता दूं कि इस अंश में उन स्वदेशी लोगों के नाम हैं जो कि अब हमारे साथ नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में औपनिवेशिक वर्षों के प्रमुख नेताओं को समर्पित 200 से भी अधिक मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां 1788 से लेकर 1901 में फेडरेशन तक के नेताओं की है। कॉलोनियल काल के दौरान ऐतिहासिक हस्तियों को वीर और सराहनीय के रूप में मनाए जाने को उन लोगों द्वारा चुनौती दी जा रही है जो कहते हैं कि ये उस इतिहास का महिमा मंडन करता है जो कि नरसंहार, भूमि चोरी और प्रथम राष्ट्र के लोगों के उत्पीड़न से चिन्हित है। सार्वजनिक स्मारकों की भूमिका और औपनिवेशिक हिंसा से संबंध पर इसी तरह की बहस कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीपों में भी देखी गई है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में कुछ कार्यकर्ताओं ने इन मूर्तियों को हटाकर मामले को अपने हाथ में ले लिया है, जिसे पुलिस बर्बरता मान रही है। एसपीएस ने मेलबर्न में स्थित एक अनाम समूह से बात की जिन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सभी कॉलोनियल मूर्तियों को हटाना है जो उनके अनुसार ऑस्ट्रेलिया के हिंसक अतीत की याद दिलाते हैं।
The statue is an act of resistance and a response to the violence that they embody. You know, we're emphasizing that hope lies in a culture of resistance.
It can be good to bring it back to Australia's history of not telling the truth about what happened when people came here.
जहां उनका मानना है कि ऐसी मूर्तियों का जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, इस समूह के सदस्यों ने एसपीएस से इसी शर्त पर बात की कि उनकी आवाज और पहचान गुप्त रखी जाए। ऑस्ट्रेलिया की कुछ सबसे विवादास्पद औपनिवेशिक प्रतिमाएं सिडनी के सीबीडी में हाइड पार्क में हैं। 1879 की एक ब्रॉन्ज कैप्टन कुक प्रतिमा जिस पर डिस्कवर्ड द टेरिटोरी लिखा गया है, स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर जीवित संस्कृति होने के बाद भी खड़ी है, मौजूद है। सिडनी शहर के पार्षदों ने 2023 में 25 औपनिवेशिक प्रतिमाओं की पट्टिकाओं की समीक्षा करने के लिए मतदान किया था। हालांकि आदिवासी पार्षद यवोन वेल्डन ने एसपीएस को बताया कि इस दिशा में प्रगति रुक गई है। एसपीएस ने जिस मेलबर्न से समूह से बात की है, उनका मानना है कि इस दिशा में परिवर्तन की जो गति है वो बहुत धीमी रही है। इन सदस्यों का कहना है कि वे पिछले 18 महीने में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि पिछले साल जून में किंग जॉर्ज V की 2.7 मीटर की प्रतिमा के कांस्य सर को काटना भी शामिल है। आपको बता दें कि ये उन्होंने राजा के जन्मदिन की सार्वजनिक छुट्टी पर किया। बाद में मार्च 2025 में उत्तरी आयरिश बैंड नी कैप के अंतिम मेलबर्न शो में ये हिस्सा देखा गया। ऐसे में विक्टोरिया पुलिस का कहना है कि लापता सिर की जांच अब भी जारी है। क्षतिग्रस्त हुई औपनिवेशिक मूर्तियों की मरम्मत में करदाताओं के हजारों डॉलर खर्च हो सकते हैं। इंटरनेशनल कंजर्वेशन सर्विसेज के रिचर्ड सीलिंग का कहना है कि ये एक वैश्विक समस्या है जिसने कि 2020 में यूके में ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शन के दौरान विशेष रूप से प्रमुखता हासिल की थी।
There's a statue of Colston, who was a slave trader in Bristol, and a public protest basically toppled Colston, rolled him down the main street and into the harbour.
तस्मानिया में पिछले साल मई में एक सुबह निवासियों ने पाया कि तस्मानिया के पूर्व प्रीमियर विलियम क्रॉथर की मूर्ति को पिछली रात काट दिया गया था। 150 साल से भी ज्यादा पहले गवाहों की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि डॉक्टर क्रॉथर, जो कि एक सर्जन भी थे, ने 1869 में होबार्ट के मुर्दा घर से आदिवासी व्यक्ति विलियम लैनी की मूर्ति से सर चुराया था और उसे लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स को भेजने की योजना बनाई थी। मूर्ति को हटाने के लिए लंबे समय से चल रहे अभियान के कारण 2022 में होबार्ट सिटी काउंसिल ने व्यापक परामर्श के बाद विलियम क्रॉथर की 130 साल पुरानी मूर्ति को हटाने का फैसला किया। इसके बाद काउंसिल ने साइट के लिए नए व्याख्यात्मक तत्व जोड़ने की योजना बनाई, जो कि विलियम क्रॉथर और विलियम लैन की जटिल कहानियों को बताते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये योजना पूरी हो पाती, मूर्ति गायब हो गई और खाली चबूतरे पर स्प्रे पेंट से लिखे गए शब्द थे व्हाट गोज अराउंड और डीकोलोनाइज। होबार्ट सिटी काउंसिलर लुई इलियट का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति का विनाश भयावह था और ये क्रॉथर के वंशजों के लिए बहुत परेशान करने वाली घटना है।
It was taken down because of a denied and unproven allegation of an individual who actually did a huge amount of good for our community and whose community paid for and wanted this statue erected. Even if the allegations were true, we need to look at the whole person and the values at the time.
SPS से बात करने वाले कार्यकर्ताओं के समूह ने बताया कि वे मूल निवासी यानी इंडिजीनियस नहीं हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अतीत के बारे में सच्चाई सामने लाने वाली आवश्यकता को लेकर भावुक हैं।
Some of the indigenous people that we've spoken to have said that often when a statue is toppled, they see more division. What do you think of that?
I wouldn't attribute that to the toppling of the statue. I would attribute that to so many leaders who are just trying to exacerbate political polarization and othering within our communities.
I think racism in this country has been here from day dot, and maybe something like the toppling of a statue, maybe it flares it up, but maybe it's just exposing what's always around us. I do also recognize and feel really troubled by that. Maybe something we need to think more about or have more conversations about.
आपको बता दूं कि SPS The Feet की ये पूरी कहानी आप उनके YouTube चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। SPS The Feet के लिए मिशेल एलियास और बीवा क्वान की इस खबर को SPS हिंदी में आप सबके लिए लेकर आई भव्या पांडे।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.